आगे चलते हैं। आयत 11 से लेकर 17 तक मुनाफकीन के उस रवैये पर तबसरा किया गया है जो उन्होंने जंगे बनू नदीर के मौके पर इख्तियार किया था, और उन असबाब की निशानदेही की गई है जो दर हकीकत इनके इस रवैये की तह में काम कर रहे थे। तो आयत नंबर 11 जो है इसमें मुनाफकीन का क्या रवैया हमारे सामने आता है, अलम तरा, क्या नहीं देखा तूने, इल्लज़ीना, उन लोगों की तरफ, अल्लज़ीना वो लोग जो नाफकू, जो मुनाफिक हैं, जिन्होंने मुनाफकत की, यकूलूना वो कहते हैं, ले इख्वानिम अपने भाइयों को, अल्लज़ीना वो लोग जो कफरू काफिर हैं, क्या कहते हैं, और जो लोग काफिर हैं वो कौन है, मिन आहले किताबी, अहले किताब में से। तो मुनाफकीन जो हैं जिन्होंने मुनाफकत की रविश इख्तियार की हुई है ये अपने काफिर अहले किताब भाइयों से कहते हैं। और आप देख लीजिए कि दो रुखी पॉलिसी इख्तियार करना, नफा का एक रास्ते से दाखिल होना, दूसरे से निकल जाना, टनल के लिए भी लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो इन मुनाफिक कौन होता है, जबान से इकरार करता है लेकिन दिल उसका इनकार करता है। तो इन्होंने अहले किताब में से अपने कुफर करने वाले भाइयों से क्या कहा, लइन उखरिजतुम, कि अगर तुम निकाले गए, लनखरुजन्ना, हम जरूर बजरूर निकलेंगे, माकुम तुम्हारे साथ, वला नुतीउ फीकुम, और नहीं हम अतात करेंगे तुम्हारे मामले में, अहदन अबदन, तो किसी एक की भी, अबदन कभी भी, कभी भी किसी एक की बात भी हम नहीं मानेंगे, हत्ता के जैसे रसूल ही हुक्म दे दें या सहाबा कोई मशवरा दे दें या रसूल मशवरा दें तो हम जो है उनका कहना नहीं मानेंगे। वाइन कुतिल तुम, और अगर तुमसे जंग की गई, लन सुरन्नकुम, तो हम जरूर मदद करेंगे तुम्हारी। और यहां पर जो है ये जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कुतिल तुम का, और ये जो है ये माजी मजहूल है। आपको लग रहा है ना कि जरा थोड़ा मुश्किल सा है, तो कुतिल तुम जो है ये बाबे मफालिया से है, माजी मजहूल है, और इसमें जो है वो ये कह रहे हैं कि अगर तुमने तुमसे जंग की गई, लनंसुरन्नकुम, तो हम तुम्हारी जरूर मदद करेंगे, वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून, और अल्लाह गवाह है, और अल्लाह गवाही देता है कि बेशक अलबत्ता ये लोग जो हैं ये झूठे हैं। अब इससे जो है फिर क्या बात पता चलती है, कहते हैं कि ये पूरा रुकू जो है इससे ये बात पता चलती है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी नदीर को मदीना से निकल जाने के लिए 10 दिन का नोटिस दिया था और उनका मुहासरा जो था उसमें कुछ दिन अभी बाकी थे, तो उस वक्त जो है अब्दुल्ला बिन उबई और मदीना के दूसरे मुनाफिक लीडरों ने उनको ये कहना शुरू कर दिया कि हम तो 2000 आदमियों के साथ तुम्हारी मदद को आएंगे और बनू कुरैदा और बनू गतवान भी तुम्हारी हमायत में उठ खड़े होंगे, लिहाजा तुम मुसलमानों के मुकाबले में डट जाओ और हरगिज इनके आगे हथियार ना डालो, ये तुमसे लड़ेंगे तो हम जरूर तुम्हारे साथ लड़ेंगे और तुम यहां से निकाले गए तो हम भी निकल जाएंगे तुम्हारे साथ। अब हालांकि पिछले रुकू में सूरत हशर के रुकू नंबर 1 में आप ये बात पढ़ चुकी हैं कि उनको निकाल दिया गया, उनका हशर हो चुका, अब यहां पे तबसरा हो रहा है, तो तबसरा बाद में हो रहा है क्योंकि असल चीज पहले आ गई जो निचोड़ था, बाद में जो है उस पर तबसरा किया जा रहा है। तो अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि ये लोग झूठे हैं, और मुनाफकत की एक अलामत क्या होती है, झूठ बोलना, और मुनाफिक झूठा होता है। लाइन उखरजू, अलबत्ता अगर वो निकाले गए, ला यखरजू ना माहुम, नहीं वो निकलेंगे इनके साथ, वला इन कूतेलू, और अगर इनसे जंग की गई, ला यंसुरू ना हुम, नहीं मदद करेंगे इनकी, वला इन नसारू हुम, और अगर मदद करेंगे इनकी, ला युवल्लुन्नल अदबार, तो जरूर फेर लेंगे पीठ, सुम्मा ला युन्सरून, फिर नहीं मदद दिए जाएंगे। तो दुबुर वाहिद है, अदबार जमा है, और दाल बारा का लफ्ज जो है ये रूट भी है और पीठ के लिए आता है। तो पीठ फेरना क्या है कि जो है वो मदद करने की बजाय जो है वो डर कर भाग जाना, पीठ फेर लेना। अब यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है बता रहे हैं कि ये लोग झूठे हैं, और अगर कभी बिलफर्ज मदद पर आ भी गए, अगर इन्होंने मदद करनी शुरू कर भी दी, तो मुनाफिक डरपोक बहुत होता है, डरता है, छुपता है, जहां खतरा देखता है वहां सर नहीं देता, छुपाता है अपने आप को, तो ये पीठ मोड़ कर भाग खड़े होंगे। मुराद ये है कि अव्वल तो ये कि ये वादा करते हैं लेकिन मदद नहीं करते, इनके वादे झूठे हैं। अब देखे बनु नदीर जब जला वतन किए गए या बनु कुरैदा को जब कत्ल किया गया तो मुनाफिकीन में से उनसे कोई भी मदद को ना पहुंचा, दलील कि ये झूठे हैं। और दूसरी बात ये कि बिलफर्ज अगर माने भी कि ये मदद करने का इरादा कर ही लेंगे तो ये कैसे झूठे हैं कि मदद करने जब आएंगे तो लयुवल्लुनल अदबार, तो पीठ फेर जाएंगे, शिकस्त खाकर भाग जाएंगे, डर कर भाग जाएंगे। तुम मलायुनसरून, फिर इनकी जो है मदद नहीं की जाएगी, फिर उम्मीद के तमाम दरवाजे जो है वो बंद हो जाएंगे। तो मुनाफिक जो होता है ना वक्त पर साथ नहीं देता, जो सच्चा दोस्त होता है वो वक्त पर जो है वो साथ देता है। तुम मलायुनसरून, फिर इनकी मदद ना की जाएगी, कहीं से भी इनको मदद नहीं मिलेगी। युनसरून मजारे मजहूल है, लानतुम अशद्दु रहवतन फी सुदूरहिम मिनल्लाह, अल्लाह ताला कहते हैं लानतुम, अलबत्ता तुम जो हो, अलबत्ता तुम्हारा, अशद्दु ज्यादा है, ये सम तफसील है, रहवतन डर, अलबत्ता तुम्हारा डर ज्यादा है। फी सुदूरहिम, इनके सीनों में, मिन अल्लाह, अल्लाह से भी। अब यहाँ पे अल्लाह ताला मुनाफ़कत जो है इसकी इसका एक और मर्ज बता रहे हैं कि इनके दिलों में अल्लाह से बढ़कर तुम्हारा खौफ है। तो मुनाफिक जो होता है उसके दिल में अल्लाह का खौफ नहीं होता, क्योंकि अल्लाह का खौफ हो तो मुनाफ़कत क्यों करे। उसके दिल में कंट्राडिक्शन होती है, वो दुनिया का लोगों का सामना नहीं करता, मोहब्बत, जानबाजी, वफादारी अगर उसके अंदर पैदा हो तो कब तब हो सकती है जब अल्लाह का खौफ हो, और जब अल्लाह का खौफ उसके अंदर पैदा होगा तो फिर उससे क्या होगा कि सफों के अंदर एक जबरदस्त इत्तेहाद पैदा हो जाएगा। तो अगर जो है चंद मुट्ठी भर मुसलमान हैं, ईमान सच्चा लाए हैं और मुनाफ़कत नहीं है, तो फिर वो क्या करते हैं कि अल्लाह के रोब में और अल्लाह के शौक में और अल्लाह के ईमान के नतीजे में जो है वो एक फौलादी जत्था बन जाते हैं, जत्था बन जाते हैं। लेकिन मुनाफिक जो है ना चोर के पाँव नहीं होते ना, मुनाफिक जो है ना उसके अंदर ना इस्तकामत होती है, ना जुर्रत होती है, ना बहादुरी होती है, और ना मसाइल मुश्किलात जो है ना उसका सामना करना चाहता है। तो यहाँ पे वही बात बताई जा रही है कि अंतुम अशद्दु रहबतन फी सुदूरहिम मिनल्लाह, बड़े अफसोस की बात है कि इनके दिलों में अल्लाह से बढ़कर भी तुम्हारा खौफ है। ज़ालिका बिअन्नहुम क़ौमुन ला यफ़क़हून, इसलिए कि ये ऐसे लोग हैं कि समझ ही नहीं रखते। इस छोटे से फिक्रे में एक बड़ी बात बता दी गई कि ऐसे बेवकूफ हैं कि डरने के काबिल तो अल्लाह की ताकत है ना कि इंसानों की ताकत, लेकिन हर वक्त वो ऐसे काम जो हैं उसको करने से बचते हैं और जिसमें खतरा मोल लेना पड़ता है, बस डरते रहते हैं, भूल जाते हैं कि अल्लाह है जो कि इनके अमाल के बारे में इनसे पूछगिछ करेगा और इनका मुहासबा करेगा। तो यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि तुम्हारे मुनाफिकों के दिल में अल्लाह की बजाय जो जैसे यहूदियों का अगर खौफ था उनके दिल में या दूसरों का जो खौफ है, तो इसकी वजह इनकी नासमझी है। अगर ये समझदार होते, अगर ये समझदार होते तो फिर डरते नहीं। मसलन अगर मुसलमानों को गलबा है तो मुसलमानों से डर रहे हैं, यहूदियों को गलबा है तो यहूदियों से डर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है क्या बात बताई जा रही है कि अल्लाह से भी ज्यादा तुम्हारी दहशत इनके दिलों में समाई हुई है। और यहाँ मुसलमान कौन मुराद है? अल्लाह के बंदे, और इसमें जो है मुसलमान मुराद है कि मुसलमानों से डरते हैं या फिर यहूदियों से डरते हैं अगर वहां उनको फायदा नजर आता है तो, हालांकि इनको अल्लाह से डरना चाहिए था। और अल्लाह से ना डरना और लोगों से डरना ये इस बात की अलामत है। ज़ालिका बिअन्नहुम क़ौमुन ला यफ़क़हून, इसलिए कि ये वो लोग हैं फिका नहीं है, सूझबूझ नहीं है। ला युकातिलूनकुम, नहीं वो लड़ेंगे तुमसे, जमीन सब इकट्ठे। ये सब अजीब बात है कि ये सब इकट्ठे होकर नहीं लड़ेंगे, इतने ये खौफ सदा है, इनके अंदर इतनी हिम्मत ताकत नहीं है कि इकट्ठे हो जाएं और लड़ें। इल्ला मगर फी कुरम मुहसनतिन, अच्छा इकट्ठे होकर तो नहीं लड़ते, जमीयत में नहीं है, फिर कैसे लड़ते हैं? इल्ला फी कुरम, बस्तियों में, करिया की जमा है कुरम, तो बस्तियों की, बस्तियों में है ये, और बस्तियां इनकी कहाँ पे है, मुहसनतिन कलाबंद हिस्न से है, और मुहसनतिन के मानी क्या है कि मजबूत की हुई, कला बनाई हुई, कलाबंद महफूज बस्तियां, ये सब मफूल है कि ये मजबूत और महफूज बस्तियों के अंदर है। औ मिन वराए जुदर, या फिर दीवारों की आड़ में। वरा जो है ये ज़वील अज़दाद में से है, ऊपर नीचे आगे पीछे, और यहाँ पे ये क्या है कि पीछे के मानी भी आप कह सकती हैं और आड़ के मानी भी दे रहा है। आड़ किसकी की, जुदुर। जुदुर जो है ये जमा है और इसका वाहिद है जिदार। तो इनकी हालत क्या है, इनकी हालत ये है कि ये दीवारों की आड़ में सामने नहीं आते, या फिर कलों के किले जो है ना इसके अंदर छुप कर आकर बैठ गए, दीवारों के पीछे छुपकर या कलाबंद बस्तियों में बैठकर ये लड़ेंगे। और आप देख लें कि ये अपने कलों में जाकर पहले भी बैठ गए थे, अब भी बैठ गए, तो बनू कुरैजा के लोगों ने भी ऐसे किया था। तो फिर क्या बताया कि बासहुम बैनहुम शदीद, इनकी लड़ाई आपस में बड़ी सख्त है, इनके अंदर आपस में बड़ा झगड़ा है, आपस की मुखालफत में ये बड़े सख्त है। तासबहुम, तुम समझते हैं उनको जमीन सब इकट्ठे, व कुलूबहुम शत्ता, और दिल इनके जो हैं वो कैसे हैं, शत्ता हैं, फटे हुए हैं। ये बड़ी अहम बात है कि जब लोग आपस में जब उनके दिल खराब होते हैं ना, गिल है, कीना है, कदूरत है और मुनाफकत है, आपस में दूसरे के लिए जब इखलास नहीं होता ना, तो कोई कितनी बड़ी फौज क्यों ना हो, कोई कितनी बड़ी जमात क्यों ना हो, कभी वो फतह नहीं पा सकती, वो गालिब नहीं आ सकते। तो अब यहूदी जो थे, आप ये बात जान ही चुकी कि यहूदी जो थे इनके पास बहुत बड़े बहुत दौलत भी थी, बहुत सी तलवारें थी, बहुत से जंगी आदमी थे जो इनके साथ मदद करते, लेकिन इन्होंने जो है वो क्या किया, हथियार डाल दिए ना, हथियार डाल दिए। और आप देख लें कि जो है वो बनू कैनका भी जो है वो 700 लोग, 300 जिरापोश, कबीला सबसे मालदार, मदीना के अंदर आबाद, और सबसे पहले उसे जलावतन कर दिया गया। फिर आप जो हैं ये बनू नदीर के लोग भी देखें कि जंग भी नहीं की, अल्लाह ने ऐसे इनके दिलों में जो है वो रोब डाला कि जलावतनी के लिए आमादा हो गए बगैर जंग किए हुए। फिर आप इसके बाद बनू नदीर का भी देख लें कि उन्होंने भी हथियार डाल दिए, और हत्ता के फिर उनके मर्दों को और उनके सारे लोगों को जो है वो कत्ल कर दिया गया। तो यहाँ पे भी यही बात बताई जा रही है कि ये वो लोग हैं कि बजाहिर ये लगते हैं कि ये जमात है, बजाहिर ये लगते हैं कि ये एक ताकत है, तुम इन्हें इकट्ठा समझते हो, ये आपस की मुखालफत में बड़े सख्त हैं, और आपस की मुखालफत की वजह क्या है कि इनके दिल एक दूसरे से फटे हुए हैं। इस पर गौर करना चाहिए। यहाँ पे मुनाफिकीन की एक और कमजोरी का जिक्र किया जा रहा है। तो पहली कमजोरी क्या थी कि मुनाफकत, नाफकू। दूसरी कमजोरी क्या थी, काजिबून। तीसरी कमजोरी क्या है कि बुज़दिल, लानतुम अशद्दु रहबतन फी सुदूरिहिम मिनल्लाह, लोगों से डरते हैं अल्लाह से नहीं डरते। और चौथी कमजोरी यानी, और यहाँ पे भी बुज़दिली आयत 14 से पता चल रही है, सामने नहीं आ रहे, कुरम मुहसनतिन औ मिन वराए जुदर, यहाँ से पता चल रहा है कि ये डरपोक बुज़दिल लोग हैं। और अगली इनकी जो है वो कमजोरी क्या है कि इनका आपस के अंदर इख्तलाफ बड़ा शदीद है, आपस में ये बहुत लड़ाइयां करते हैं, और बजाहिर ये सब इकट्ठे हैं, एक जमीयत है, किला है उसके अंदर रहते हैं, वकुलूब हम शत्ता, और दिल इनके जो है वो फटे हुए हैं। शत्ता किसे कहते हैं, शत्ता का लफ्ज आप समझ लीजिए, शतीत, शतीत इसका वाहिद है, शीन ता ता से ये लफ्ज निकला है, और इख्तलाफ के लिए कुरान में एक मुख्तलिफ लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, और दूसरा शत्ता। मुख्तलिफ के मानी होते हैं किसी चीज का शिराजा बिखर जाना, और जैसे मुख्तलिफ कहते हैं कि चीजों की नौइयत जो है जब मुख्तलिफ है, मसलन चीजें बिखर गई हैं, और जिसमें क्या चीजें बिखरी हैं कि आपके पास आपकी झोली में जो कुछ भी था उसमें पत्थर हो सकते हैं, उसमें सब्जी हो सकती है, उसमें जो भी चीजें आपने झोली में जमा की थी सारी गिर गई, वो मुख्तलिफ चीजें हो सकती हैं। शत्ता जो है ना, एक ही चीज के अज्जा का मुंतशिर होना, कि मसलन बस सिर्फ पत्थर थे, वो मुंतशिर हो गए, या एक ही जैसे आपने जो है लहसुन रखा हुआ था आपकी मुट्ठी में था वो आपसे गिर जाए मुंतशिर हो जाए, तो शत्ता। तो शत्ता का लफ्ज एक ही चीज के अज्जा के मुंतशिर होने के लिए आता है, जबकि मुख्तलिफ का लफ्ज अशिया की नौयत मुख्तलिफ हो तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये खुले मैदान में मुकाबले का हौसला कैसे पैदा करें, क्योंकि इनके तो दिल ही आपस में जुड़े हुए नहीं है ना, जब दिल जुड़े हुए होंगे तो ये खुले मैदान में बाहर आएंगे और फिर मुकाबला करेंगे। और ये बात यहाँ पे बहुत आम है कि जो है वो मुसलमानों ने बहुत सी जंगों को क्यों हार दिया, रशिया के मुकाबले में अफगानिस्तान ने जंग हार दी कि फतह जब तक लेनी थी तो सब इकट्ठे थे, 10 साल तक तकरीबन जंग की, और जब फतह मिल गई तो जितने मुजाहिदीन के ग्रुप थे आपस में लड़ने लगे, वो जो इक्तदार मिल गया था कि उसमें एक कहने लगा मुझे ये चाहिए, दूसरे को ये, तीसरे को ये, और आपस में। अब उसके बाद ये कि आज तक अफगानिस्तान में जंग है जो कई सालों पर मोहित होगी, 80 की दहाई में शुरू हुई थी, अब 2000 ऊपर से ऊपर जो है 10 की दहाई फिर खत्म हो रही है ना, तो 20-30 साल के करीब। अच्छा, इसी तरह बहुत सी जमातें हैं, उन जमातों का रोब दबदबा खत्म हो जाता है जिनके अंदर जो जिम्मेदारान है उनके अंदर इत्तेहाद और यकजहती नहीं पाई जाती। इसी तरह बहुत से खानदान होते हैं, घर होते हैं, अगर मियां बीवी में आपस में मोहब्बत ना हो तो बच्चों के दिल में मियां बीवी का रोब और एहतराम खत्म हो जाता है। अम्मी की अम्मी कहें तो बात का वजन नहीं, बाप कहे तो बात का वजन नहीं, इसलिए कि बच्चे औलाद आपस में लड़ रही है ना, वालदेन आपस में लड़ रहे हैं तो बच्चों को क्या परवाह, अम्मी क्या कह रही है, अब्बू क्या कह रहे हैं। तो घर को बचाना है तो मियां बीवी को आपस में मोहब्बत और प्यार की फिजा पैदा करनी होगी और करनी चाहिए, और लड़ाई किस बात की। अच्छा, इसी तरह अगर किसी भी इदारे, तंजीम, मस्जिद या क्लास को बचाना है तो आपस के लोगों को आपस में इत्तेहाद, मोहब्बत और यकजहती पैदा करनी चाहिए, दिल जो है उनमें से गिल निकाल कर उसकी जगह ईमान आ जाए, और जब ईमान आएगा तो सब इकट्ठे हो जाएंगे, गिल होगा तो फिर क्या है कि शतीद की कैफियत पैदा हो जाएगी कि लोग आपस में मुंतशिर हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि ये जो मुनाफिक हैं, असल बात क्या है कि ये खुले मैदान में नहीं, ये तो छुप छुप कर रहते हैं, इनके अंदर बीमारी ये पाई जाती है कि इनके दिल फटे हुए हैं, ये आपस में क्या करते हैं, इनके अंदर बुगद है, ये आपस में एक दूसरे के खैरखा नहीं है। अच्छा, इससे फिर और भी एक बात पता चलती है, अब ये तो उस जमाने के लोगों को कहा जा रहा है ना कि तासबहुम जमीउन व कुलूबहुम शत्ता, कि इनके दिल एक दूसरे से फटे हुए हैं और आपस की मुखालफत में ये बड़े सख्त हैं, तुम इन्हें इकट्ठा समझते हो, तो ये हर दौर के मुसलमानों के लिए है कि अल्लाह की रजा के लिए जब कोई हम काम शुरू कर रहे हैं तो फिर जो है हम इकट्ठे और मुत्तहिद होकर चलें। ज़ालिका बिअन्नहुम क़ौमुन ला याकिलून, इनका ये हाल इसलिए हुआ कि ये बेअक़ल लोग हैं, अकल नहीं होती ना तो फिर छोटे छोटे इख्तलाफात और फिर गिल और फिर कीना, कुदूरत, नफरत, हसद, इस तरह के जज्बात जो है वो पैदा हो जाते हैं। फिर करना क्या चाहिए, आपस में यक जा होना चाहिए, मुत्तहिद होना चाहिए, क्योंकि एक अल्लाह, एक किताब, एक रसूल पर ईमान लाने वाले ऐसे नहीं हो सकते कि उनके दिल दो मुख्तलिफ कैफियतों में धड़कते हों। तो पहले ये कहा कि ये समझ ही नहीं रखते, बेवकूफ लोग हैं, अब कहा जा रहा है कि ये बेअकल लोग हैं, अकल इनके पास नहीं है। कमसल लजीना, इनकी मिसाल तो उन लोगों की तरह है, मिन कबलहिम करीबन, मिन कबलहिम इनसे पहले, करीबन करीब में, तो मिसाल है का मानिद, मसली मिसाल, मानिद मिसाल इन लोगों की जो इनसे पहले हुए, करीबन करीब या कुछ ही, जाकू चखा उन्होंने वबाला वबाल अमरहिम अपने किएगा। क्या फरमाया कि इनसे थोड़ी ही मुद्दत पहले जो हैं कुछ लोग ऐसे भी हैं कि अपने किए का मजा जो है वो चख चुके हैं, तो इनकी मिसाल तो उन्हीं लोगों की तरह है जो इनसे थोड़ी ही मुद्दत पहले अपने अमल का मजा जो है वो चख चुके हैं। ये कौन लोग हैं, मुफस्सरीन की एक राय तो इससे ये है कि इसमें जो है वो इशारा है ग़ज़वा बदर की तरफ, क्योंकि बदर में कुरैश को मुंह की खानी पड़ी थी, तो थोड़ी देर पहले ही ऐसा हुआ था ना, अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम करीबन, कुछ मुद्दत पहले, तो बदर के मैदान में अहले मक्का ने क्या किया था, ज़ाकू वबाला अमरहिम, कि उनको जो था अपने किए का मजा उन्होंने चखा था। मुसलमानों ने तो जाके जंग नहीं की थी, वो आए थे, मुसलमानों ने अपना दिफा किया और फिर वो उनके साथ जो सलूक हुआ। अच्छा, दूसरा राय ये है कि इसमें इशारा है यहूदियों के कबीले बनू कैनका की तरफ, क्योंकि अपनी कसरत तादाद, अपने सरो सामान के बावजूद इन्हीं कमजोरियों की वजह से मुसलमानों की मुट्ठी भर वे सरो सामान जमा से वो शिकस्त खा गए। तो ये वो लोग मुराद हैं। अच्छा, इसके बाद जो है तीसरी भी एक राय है। तीसरी राय ये है, उनका ये कहना है कि यहां पर जो है वो मुराद है बनू नदीर के लोग, क्योंकि बनू नदीर की मिसाल बिल्कुल ताजा थी करीबन, तो इसलिए यहूद के ये लोग जो थे, ये वाला ग्रोह जो था, कैसे वोट कर चले गए, तो उनकी तरफ जो है वो इशारा किया जाए। बहरहाल तीनों भी मुराद हो सकते हैं, उनमें से कोई एक भी, तो उनके बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं वलहुम अजाबुन अलीम, और इनके लिए अजाब है दर्दनाक, कमसली शैतानी, मानिद मिसाल शैतान की। इस काला जब वो कहे लिल इंसानी, इंसान को उकफुर, वो कुफर के कुफर कर, ये ऑर्डर का सीगा है कि जब वो इंसान को कहे कफरा यकफुर उकफुर के तू कुफर कर, फलम्मा कफरा पस जब वो कुफर करे इनकार करे, काला तो वो कहे इन्नी बरी हूं मिनका, बेशक मैं ला ताल्लुक हूं, बेनियाज हूं, बेजार हूं तुझसे, इन्नी अखाफुल्लाह रब्बल आलमीन, बेशक मुझे डर लगता है अल्लाह से जो जहानों का रब है। अब यहां पर जो है पहले तो मुनाफिकीन की मिसाल जो है ये कुरैश या कबीला बनू कैनका या कबीला बनू नदीर से दी गई, मुनाफिकीन ऐसे हैं, या फिर ये कि अब उसकी मिसाल जो है मुनाफिकीन की शैतान से दी जा रही है कि शैतान पहले इंसान से कहता है कि कुफर कर यानी गुनाह कर, अल्लाह का कहना ना मान, अल्लाह के रसूल का कहना ना मान, जब इंसान कुफर कर बैठता है तो कहता है कि मैं तो उसे बरी जिम्मा हूं, मुझे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर लगता है। अब देखें बिल्कुल ऐसा ही मामला जो है कब पेश आया, कुफारे कुरैश के साथ जो है वो जंगे बदर में भी आया था ना, शैतान ने क्या कहा था सूरत अनफाल की आयत 48 के जो है वो पहले तो उनको कहा कि आओ इकट्ठे होकर आओ, मुसलमानों के खिलाफ लोगों को तैयार किया, और फिर उसके बाद जो है उनसे कहा कि ला ग़ालिबा लकुम अल-यौम मिनन नासी व इन्नी जारुल लकुम, कि पहले उनको कहा कि आज कोई तुम पर ग़ालिब आने वाला नहीं है, मैं भी तुम्हारा हमसाया हूं, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। जब दोनों फौजों का आपस में मुकाबला हुआ और वो उल्टा फिर गया तो उस वक्त वो कहने लगा इन्नी बरी हूं मिनकुम इन्नी अरा माला तरहुन इन्नी अखाफुल्लाह, उल्टा फिर गया और कहने लगा कि मैं अब तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, मुझे वो नजर आ रहा है जो तुम्हें नजर नहीं आ रहा। तो उस वक्त शैतान जो है बनू कनाना के रईस सुराका बिन मालिक की शक्ल में जो है वो मिला था ना उनको, और कहा था कि जंग करो और मेरे भी साथी, मेरा कबीला भी साथ आएगा, और जंग के मौके पे फिर वहां से जाने लगा और कहने लगा कि नहीं मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर लगता है। तो शैतान क्या करता है, मौका परस्त होता है, साथ नहीं देता। और ये मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई और इसके साथी जो थे यहूदियों की पीठ तो ठोंकते रहे बजाते रहे, जब मौका आया तो आए नहीं कि अच्छा जलावतनी हो रही है और अब इन पे जब हमला हो रहा है तो अब ये आके इनका साथ देते। फकाना आकिबतहुमा, बस हुई आकबत इन दोनों की, फिर इन दोनों का अंजाम ये है। फकाना पस हुआ, आकिबतहुमा अंजाम इन दोनों का, तो दोनों से मुराद कौन लोग हैं, शैतान और इंसान, और दूसरी राय ये है मुनाफिकीन और बनू नदीर। मुनाफिकीन बनू नदीर की पीठ ठोंक रहे थे ना, अब्दुल्ला बिन उबई ने कहा था ना कि मेरे साथ जो है 2000 आदमी हम तुम्हारी मदद को आएंगे, और बनू कुरैजा भी और बनू गुतवान भी, और जब वक्त आया तो फिर कोई नहीं था आया था। जब बनू जो है वो नदीर को रसूल अल्लाह ने नोटिस दिया और वो जब वहां से गए हैं फिर तो ये कोई भी इनके साथ नहीं आए थे। तो ये बात जो है वो बताई जा रही है कि उस वक्त जो है इन्होंने इनकी कोई भी मदद ना की। तो शैतान इंसान से गुनाह करवाता है और फिर साथ नहीं देता, और ना ही हशर के मैदान में साथ देगा, कहेगा मैंने कहा ही था, मैंने कौन सा जबरदस्ती कराया था। और दुनिया में भी ऐसे ही होता है, और मुनाफिक की ये खूबी है कि वो ऐसा करता है। بس ان دونوں کا انجام کیا ہوا؟ انہما فی الناری، کہ یہ دونوں آگ میں ہیں، جہنم میں ہیں، خالدین فیہا، رہنے والے ہیں اس میں ہمیشہ کے لیے، وہ جہنم میں جانے والے ہیں. خالد یہ فائل ہے، تو خالدین سارے کے سارے اس میں جانے والے ہیں. ہاں کی ضمیر آگ جہنم کے لیے آئی ہے. وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کی یہی جزا ہے، تو یہی ظالموں کا جو ہے وہ بدلہ ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ قرآن مجید کا قاعدہ کیا ہے، کہ وہ منافق مسلمانوں کے نفاق پر جب گرفت کرتا ہے تو کتنی سخت گرفت کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ کہ اگر ان کے ضمیر کے اندر تھوڑی سی بھی زندگی باقی ہے، تھوڑے سے بھی وہ اپنی روش پر اگر نادم ہوں گے، تو اپنے آپ کو نفاق کے رویے سے جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کریں گے، اور اپنی خواہشات جو ہے نا ان کو چھوڑیں گے. تو انسان جو ہے وہ جھوٹا مرتبہ، عزت، دولت، فائدے، نفع، دنیا، اس کی وجہ سے نفاق کرتا ہے، اور کبھی ایک کی طرف ہوتا ہے، کبھی دوسری کی طرف. وہ اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس وقت ادھر چلوں کہ ادھر چلوں. موقع شناس جو بنتا ہے، موقع پرست. آپ پیچھے بھی پڑ چکے تھے نا، تربستم پتن تم تربستم، آپ نے منافقین کی علامتیں جو تھی وہ پڑھی سورت حدید میں، چار جو علامتیں تھیں، تو اس میں بھی یہی بات تھی، اس میں سے تربستم بڑی خطرناک تھی. تربس ہوتا ہی ہے کہ نفع جہاں سے ملے گا وہ کام کرنا، ادھر دیکھنا کبھی ادھر دیکھنا. تو یہاں پہ بھی بتایا جا رہا ہے فذلک جزاء الظالمین، اور ظالموں کی یہی جزا ہے. تو منافق کیسے ہوتے ہیں؟ نہ دنیا ان کی اور نہ ہی آخرت ان کی. جیسے جیسے کافر ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ انکار کر لیتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ ایک طرح سے بہادر بن کر دنیا میں مزے لے رہے ہوتے ہیں. تو منافق کیا کرتے ہیں؟ کہ کلمہ پڑا بھی ہے، انکار بھی کر رہے ہیں، نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں. تو دو کشتیوں کا مسافر کبھی منزل پر نہیں پہنچا کرتا. تو یہ پورا رکوع جو ہے اس میں نصیحت ہے، اور نفاق سے، نفاق کا جو رویہ ہے اس پر ملامت ہے. اور جو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ جو نفاق کرتا ہے تو اس کے اندر کیا امراض پائے جاتے ہیں؟ نمبر ایک، تو جھوٹ بولتا ہے، اور نمبر دو، اس کی لائف، اس کی زندگی کے اندر کنٹراڈکشن، منافقت ہوتی ہے. نمبر تین، وہ انسانوں سے ڈرتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا، نہ اس کو آخرت کا خوف ہوتا ہے. اگر اللہ کا ڈر ہونا، جو ہی اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو انسان توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اور اپنے رویے پر جو ہے وہ کیا کرتا ہے، سرزنش اپنے آپ کو خود ہی دیتا ہے. جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ تو منافق ہو گیا. حضرت حنزلہ نے یہ کہا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سنا تو انہوں نے کہا میرے بھی دل کی ایسی کیفیت ہے کہ میرا دل نہیں لگتا. جیسے رسول اللہ کی محفل میں حال ہوتا ہے ویسے باہر نہیں ہوتا. اور آپس میں محاسبہ دونوں بزرگ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں کہ ہم تو منافق ہو گئے. اور رسول اللہ کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کی محفل میں ہوتے ہیں تو جو ہمارا حال ہوتا ہے جب آ جاتے ہیں تو ویسا حال نہیں ہوتا، تو ہم تو منافق ہو گئے. تو آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ کہ خدا کی قسم، اگر تمہارا حال جو میری محفل میں ہوتا ہے ہر وقت ہی اگر ایسا حال ہوتا نا، تو کیا تھا کہ فرشتے جو تھے وہ گلیوں میں تم نے ملتے اور تم سے مسافیہ کرتے. تو انسان کی ایمان کی حالت تو بدلتی رہتی ہے، اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، لیکن مسلمان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ایمان کی حالت کو بڑھانے کی فکر کرتا ہے. اور اگر شیطان اس کے دل میں کچھ وسوسے ڈال بھی دے اور کچھ باتیں اس کے سامنے آ بھی جائیں، اور اس کے رویے میں جب نفاق پیدا ہونے لگے، تو پھر اللہ کا ڈر، اتقوا اللہ، اللہ کا ڈر جو ہے اس کو نیکی اور تقوی اختیار کرنے پر آمادہ کرتا ہے. تو یہی ہے جو ہے وہ آج کا ہمارا سبق، کہ نہ تو بزدل ہونا ہے، نہ منافقت پیدا کرنی ہے، اور نہ موقع شناس بننا ہے، اور پھر یہ کہ جو ہے وہ حسن عمل کرنا ہے، حسن عمل کرنا ہے، سچا ایمان لانا ہے. اور انصار اور مجاہدین کی، انصار اور مہاجرین کے جو اوصاف تھے، کہ نیت میں اخلاص تھا، اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا چاہتے تھے، اور نیکیوں میں سبقت لے جانے والے تھے، ایثار کرنے والے تھے، اور تنگی کے باوجود دوسروں کی مدد کرنے والے تھے، اور پھر غل سے بچنے والے. غل سے بچنے والے. اور اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے, ایمان والے بھائیوں کے لیے بھی, کہ اللہ ہمارے دلوں سے غل نکال دے. تو ہم سب کو بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم دنیا سے اس حال میں رخصت ہوں, میں بھی اور آپ بھی, کہ ہمارے دل میں کسی کے لیے جو ہے کوئی کینہ, کھوٹ, کدورت, نفرت کے جذبات جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.